ओम शांति। जैसा कि अभी आप विषय सुन रहे थे, योग की गहराई और योग का प्रयोग, लेकिन मैं तो आप सबको कोई गहरा योग सुनाने के लिए या कराने के लिए नहीं बैठी। मैं योग को अति सहज योग, सरल योग, जिसे अगर योग शब्द ना भी कहो तो जैसे कि बाबा हमको रिमाइंड कराते हैं कि बच्चे इसे याद कहो, जो बात भूल गए थे, विस्मित हो चुके थे, उसको मैं याद कराने आया हूँ। और अगर तुम याद रखते हो कि मैं कौन और मेरा बाबा कौन, तो यही तुम्हारा योग है। भूली हुई बात को याद कराना और हमें उसे याद कर लेना और उसकी याद में ही रहना, जो याद कराया, इसी का नाम सहज राजयोग है। अब आज हम सब वो बाबा के बच्चे बैठे हैं, चाहे कोई यहाँ शायद कुछ समय से चलने वाले भी आ गए हों, पुराने नए मिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब ने अपने भक्ति काल में भक्ति अवश्य की होगी। अगर इस जन्म में नहीं की है तो इससे पूर्व जन्म में जरूर की है, क्योंकि भक्तों को ही भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त होता है। अब भक्ति में हम भगवान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक रहे, बहुत इच्छुक रहे कि जिस भगवान की इतनी महिमा है कि धरती को कागज बना दो, सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, तब भी उस प्रभु की महिमा लिखी ना जाए। इतना महिमावान वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, उनसे हमारा मिलन हो जाए। कम से कम मिलन से थोड़ी झलक उनकी महानताओं की, उनकी विशेषताओं की, उनकी इतनी अथाह प्राप्तियों की थोड़ी झलक तो हम प्राप्त कर सके। लेकिन भक्ति काल में एक तरफ हम मिलने की कोशिश करते रहे और दूसरी तरफ ये भी मन में आ जाता था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने यही कहा कि भगवान नेति नेति है। इतने बड़े महान विद्वान ऋषि मुनि नहीं जिस भगवान से मिल सके, उस परमात्मा से हम साधारण मानव कैसे मिल सके। इसलिए हमने स्वयं को ये कहकर दूरी बनाए रखी कि हे प्रभु, आप तो बख्शनहार हो, हम तो पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं, क्रोधी हैं, आप हमारे इन सभी पापों को क्षमा कर हमको मुक्ति का द्वार दिखा दो। लेकिन अपने को इतना नीच समझ लिया और समझ सकते हो कि एक रंक दूसरा राव, एक राजा एक फकीर, दोनों का मिलन कैसे हो सकता है। मिलन के लिए प्यासे रहे, इच्छुक बने रहे, कैसे दाता से हमारा मिलन हो जाए। लेकिन इतनी ज्यादा दूरी हमारा मिलन उस प्रभु से हुआ नहीं। जब दूरी बनी रही और प्रभु को पुकारते रहे, आखिर ईश्वर क्या कहते हैं, रहम दिल है, कल्याणकारी है, वह बच्चों की पुकार सुन, हमारी इच्छा और लालसा देखकर वो स्वयं इस धरा पर साकार हुए और साकार होकर हम बच्चों से आकर मिलते हैं। बच्चे तू मेरे से दूर रहा लेकिन मैं तेरे से आकर मिलता हूँ। अब वो हमसे कैसे आकर मिले, उन्होंने हमें बता दिया कि जैसा तेरा स्वरूप है, दिव्य ज्योति बिंदु रूप है, ऐसे मैं भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तेरे और मेरे रूप में कोई दूरी नहीं है। जैसे तू ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, ऐसे मैं परम पिता परमात्मा ज्ञान गुण शक्ति आनंद इन सबका सागर। इसलिए तेरे गुण और मेरे गुण दोनों समान हैं। तो अपने आप को इतना नीच और पापी कहकर मेरे से बहुत दूर चला गया, मैं तेरे से आकर मिलता हूँ कि वो गुण जो मेरे हैं वो तेरे भी हैं। और ये जो संसार जहाँ तू रहता है ये भी तेरा धाम नहीं है। तो यही कहता चला गया कि दुनिया रहन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये रहन बसेरा है, एक टेम्पोररी स्थान है जहाँ पर तू आया है अपना खेल अदा करने के लिए। लेकिन तेरा धाम और मेरा धाम दोनों के धाम एक ही हैं, और वो पांचों तत्वों से परे छठे ज्योति मह तत्व में मैं निवास करता हूँ। और तू भी मेरे धर्म धाम का ही वासी है, तू भी वही वास करने वाला है। जब तेरा रूप मेरे जैसा है, तेरे गुण मेरे जैसे हैं, तेरा धाम मेरे जैसा है, फिर तू मेरे से इतना दूर क्यों चला गया? आओ हम आपस में मिलते हैं। अब बाबा आकर हमसे मिला है, बाबा आकर हमसे मिला है, जैसा मैं हूँ वैसा तू है, ये भी मिलन है। लेकिन फिर भी हम बैठकर योग लगाते हैं, कारण क्या? कि एक तरफ का मिलना तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ भी तो मिलना हो। बाबा ने कहा मैं ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। जब तक मैं अपने स्वरूप में स्थिर ना हो पाऊँ तब तक मेरा और बाप का मिलन हो नहीं पाएगा। एक तरफा मिलन रहेगा, दो तरफा मिलन नहीं हो पाएगा। बाबा हमसे मिला है, हम बाबा से नहीं मिल पाए हैं, इसलिए बाबा हमसे मिलता है आकर, तू भी मिल बच्चे मेरे से। अब हमने तो ये कह दिया बंदे तो गंदे हैं और आप तो बख्शनहार हो, तो बाबा बच्चों को कहता है, कौन कहता है तू गंदा है? तू तो ओरिजिनली पावन है, पवित्र है, शुद्ध है, शांत है, तेरा स्वरूप तो मेरे ही जैसा है। बच्चे तो इतना अपने आप को दीन हीन कमजोर क्यों समझ रहा है? अब बाबा हमसे मिलता है, हम बाबा से कैसे मिले रहे उसके लिए हम खास बैठते हैं और अपने स्वरूप को जो वास्तविक स्वरूप बाप ने हमको बताया, हम उस स्वरूप से अपने बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मिलन हो नहीं पाता। कारण क्या है, इसमें बाधा क्या है? और बहुत समय का यही बाधा रहा कि हम स्वयं को देह समझते रहे। बार बार हमारा मन और बुद्धि देह, देह दुनिया, देह संबंध, देह पदार्थों में चला जाता है। इन सबसे बुद्धि का योग निकाल, एक से बुद्धि का योग लगा रहे, उसका अभ्यास हम करने की कोशिश करते। तभी बाबा कहते योग का आधार तुम्हें मैंने बता दिया और योग की विधि भी आपको बता दी। अगर आपका आधार ठीक होगा और विधि योग की ठीक होगी, आपका मिलन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और मिलन का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा किसी अड़ोसी पड़ोसी से भी जब मिलते हैं तो संबंध जोड़ लेते हैं, अंकल जी, आंटी जी, मामा जी, चाचा जी, कुछ ना कुछ कह देते हैं। मेरे साथ भी तेरे सर्व संबंध ये मिलन का आधार बनेगा। और विधि है देह सहित, देह की इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा ले और मुझ सर्वशक्तिवान से अपने सर्व संबंध जोड़ ले। या तो तेरा आधार ठीक नहीं है या तेरी विधि ठीक नहीं है, इसलिए मैं पहचान देता हूँ। लेकिन मेरी पहचान होने के बावजूद भी तेरा मेरे से मिलन का अनुभव नहीं हो पाता है। हम स्वयं को स्वयं चेक करें कि हमारा आधार सही है, विधि ठीक है, हमारे सरल संबंध बाबा से हैं। क्योंकि अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के नाते सर्व आत्माएं हैं, कोई मामा चाचा काका माता पिता नहीं है, सब आत्माएं हैं और क्रिएटर की क्रिएशन है। रोल में कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई बंधु है, ये वैरायटी रोल है जो मुझे अदा करने हैं और वो भी बहुत सुंदर रूप से अदा करने हैं। लेकिन मेरा इनसे वो रिश्ता नहीं है जो रिश्ते हमने मन से जोड़ लिए। मन से मेरे सारे रिश्ते उस एक के साथ। अब स्वयं हम स्वयं से पूछें कि हमारा बाबा के साथ इतना संबंध जुटा हुआ है। भक्ति में बहुत अच्छी कहानियां बनी हुई हैं। वो सुनाते हो कृष्ण को भगवान कह देते हैं, कृष्ण सुदामा की कहानी बताते हैं कि कृष्ण सुदामा एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे, लेकिन सुदामा ने एक भूल कर ली जो वो तो बन गए वैकुंठ नाथ, वो बन गए दरिद्र नारायण। और वो भूल क्या हुई, बड़ी अच्छी कहानियां लिख रखी हैं कि सुदामा की माँ ने थोड़े चने दिए थे सुदामा को कि जब स्कूल में रिसेस होती है, आधी छुट्टी उसको कहते थे, उस समय ये चने दोनों मिलकर खा लेना। तो कहती है सुदामा और कृष्ण मानो भगवान के लिए कहते हैं, दोनों एक टहनी पर बैठे थे और सुदामा चने खा रहा था, लेकिन पहले बच्चे भी अंगोछा सर गले में डाले रखते थे तो उस अंगोछे से अपना मुंह ढका हुआ था, मुंह ढककर चने खा रहे थे। तब कहते हैं श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा ये कट कट की आवाज कहाँ से आ रही है। तो सुदामा ने कहा सर्दी बहुत है, दांत कट कटा रहे हैं। ये छोटा सा झूठ सुदामा ने बोला इतने से चने खाने पर, इस एक झूठ के कारण वो वैकुंठ नाग कहला गया और वो दरिद्र नारायण बन गया। अब हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारा बाबा है वैसे ही तो हम थे, जो उनका धाम था वही मेरा धाम था, जो बाबा के गुण थे वही मेरे गुण थे, जो ईश्वर के कर्तव्य थे वही मेरे कर्तव्य थे। लेकिन हमने छोटा सा एक झूठ बोल दिया कि मैं देह हूँ और वो विदेही रहा, मैं देह में आ गया, मेरी और उसकी कितनी दूरी बन गई। और आज बाबा आकर हम बच्चों से मिलता है, कहते भी हैं कि सुदामा अपनी दूरी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए फिर भी उनके द्वार गया, लेकिन वो उन्हें गले लगाते हैं, वो संकोचवश दूर हटता है। ब्राह्मण होने के नाते वो उनके चरण धोते हैं, वो चरणों को उनसे छुड़वाता है, वो उनका सत्कार करते हैं, वो सत्कार को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक आज अगर आप और हम देखें तो बाबा जब हमको कहते हैं कि बच्चे तू तो मेरी महिमा करता रहा, मेरी पूजा तो केवल निराकार स्वरूप में होती है, तेरी पूजा तो डबल होती है, साकार में भी होती है निराकार में भी होती है, तू तो मेरे से भी आगे है, तू मेरे गुणों का वर्णन करता है, लेकिन तू तो विश्व का मालिक, परम धाम का भी मालिक, ब्रह्मांड का भी मालिक और विश्व का भी मालिक, तू तो डबल मालिक बना, मैं तो सिंगल मालिक हूँ, इसलिए तू तो मेरे से भी आगे है। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल देहाभिमान में आकर के अपने गुण और शक्तियां खो चुके। बाबा हमें हमारी स्मृति दिलाते हैं तुम इन कर्म इंद्रियों के जीत हो, तुमने माया जीते जगत जीत बनकर दिखाया था, मैं तो इन कर्म इंद्रियों से ही रहित हूँ, मैं तो कर्म इंद्रियों को जीत नहीं पाता, तू तो इन पर जीत पाता है, मैं तो कर्म इंद्रियों का गुलाम ही नहीं बनता और जीतता भी नहीं, मैं तो इनसे न्यारा हूँ, बच्चे तो बहुत शक्तिशाली है। आज बाबा हमको ऐसा कहे, हम अपने आप से पूछें कि हम बाबा की ये महिमा को स्वीकार करते हैं। आज किसी मनुष्य को उसकी तमन्ना, छोटी सी इच्छा भी अगर कोई पूरी हो जाए कितना खुश होता है। और हम जिस भगवान को मिलने की आशा बनाए हुए थे आधा कल्प भक्ति काल में, वो भगवान जब हमसे मिलता है आकर, क्या हमें ये खुशी हुई है? साकार बाबा कहते थे पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। अरे बच्चे, वो शहंशाहों का शहंशाह बनाने वाला जब मुझे मिल गया, अब मुझे किस चीज की इच्छा रही? ये हीरे नहीं, ये तो कोयलों का व्यापार है, अब सच्चे हीरों का व्यापार तो अब मुझे पता चला है, ये कौन सा व्यापार? ईश्वर को प्राप्त कर, उनके ज्ञान को प्राप्त कर, उनके जो नशा चढ़ा, जो खुशी आई। आज हम अपने आप से पूछें कि सचमुच इतना नशा, इतनी खुशी उस सच्चे दाता को प्राप्त करने पर हमें मिली है? हमने ये एहसास हुआ है कि बाबा मेरे से आकर मिला है? हाँ, कहते भी हैं कि दुनियावी रूप में बोलते हैं दूरी ये मकाम, किसी की भाषा मकान किसी का दूर एक दूसरे हो जाता है तो कई बार दूरी पड़ जाती, दूरी है जबान। कभी कभी हम इकट्ठे हैं लेकिन किसी की भाषा जर्मन है, किसी की जापानीज है, किसी की कोई भाषा है और हमारे वो भाषा दूसरी है, तो आपस में इकट्ठे होते भी हम दूर हैं। लेकिन आत्मा की भाषा और परमात्मा की भाषा तो एक ही है, वो साइलेंस, एक ही भाषा है हमारी। उसकी दूरी तो भाषा के कारण भी हो जाती है, दूरी विचारों के कारण भी हो जाती है। हमारे विचार है प्रभु मिलन मनाने के, उनके विचार है बच्चों से मिलने के, हमारे विचार भी तो एक ही हैं। क्यों हमारी दूरी है, कभी अपने आप से पूछे तो सही। लेकिन बाबा ने हमको बताया एक दूरी बन गई अभी मिलन की, जिसको कहते दूरी है बवाल। कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसे स्वभाव जो हमने बना लिए हैं, और वो संस्कार और स्वभाव बार बार समझते हुए भी कि हम आत्मा हैं, पुनः पुनः हमारा मन और बुद्धि देह में ले आते हैं। मालूम है ये सब देह के संबंध हैं, फिर भी संबंधों के भान में चले जाते हैं। मालूम है ये नाशवान प्राप्तियां हैं, फिर भी नश्वर प्राप्तियों के अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे देह के अभिमान के बने हुए संस्कार जो हमको ईश्वर से दूर करते हैं। इसलिए बाबा कहता है बार बार तुम्हें मुझे याद करना है, मेरी योगा अग्नि से, मेरे याद के बल से तेरे संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। तेरे बने हुए पुराने कर्मों के हिसाब किताब जो तुझे पकड़े रखते हैं, बोझिल करते हैं, ये तेरा बोझ समाप्त हो जाएगा। तू मुझे बार बार याद कर कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, तू कहाँ का है और मैं कहाँ का हूँ, तेरे गुण कौन से हैं और मेरे गुण कौन से हैं। बच्चे हम दोनों तो मिले हुए हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, तो क्यों मेरे से अपने को अलग समझ लेता है। अब हम अपने आप से पूछते हैं और बाबा हमको कितना सुंदर सुनाता है, कहते भी हैं कि मनुष्य कोई भी बात जब करता है तो उसमें चित्र की भाषा होती है, उसे क्रोध आता है तब भी उसके सामने कोई चित्र आ जाता है, लोभ आता है तब भी उसके सामने कोई चित्र आता है, विकारों को जीतता है तब भी उसके सामने कोई चित्र आता है। तभी कहा गया जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा। चित्र का चरित्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक छोटा बच्चा भी भाषा पीछे सीखता है, लेकिन पहले वो चित्र देखता है। मम्मी या पापा कहना पीछे सीखता है, पहले उनका चित्र देखता है, देखकर धीरे धीरे पहचानने लगता है कि ये मम्मी और ये पापा है। फिर शब्द सीखता हुआ वो उसे मम्मी और उसे पापा कहता है। चित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाबा ने हमको बहुत सी बातें चित्र की भाषा में सिखाता है, जिसका मैंने कई बार अपना एक अनुभव सुनाया हुआ है कि यहाँ एक बार बाबा ने कहा कि आज मैं अपने बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान दूंगा, तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित होकर बैठ गए कि 14 वर्ष तक सिंध हैदराबाद कराची में बट्टी रही, सेवा केंद्र खुलने शुरू हो गए तब भी योग तपस्या चलती रही, और आज बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान दूंगा। ये कौन से स्वरूप की आज हमें पहचान मिलेगी। तब बाबा ने कहा लच्छू बच्ची जाओ, बाबा के ऑफिस से एक प्लेन पेपर और एक पेंसिल, नोकीली पेंसिल लेकर आना, जो बिल्कुल घड़ी हुई हो, आगे से बहुत नोक निकली हुई हो, वो भी इस बात को एक नया दृश्य समझकर भागती हुई गई और जल्दी से जल्दी कागज और वो पेंसिल लेकर आ गई। तब बाबा ने कहा, आज बाप अपने बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान देता है। ये बाबा ने स्वयं स्वयं के स्वरूप की पहचान दी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि चित्र की भाषा में दी। बाबा ने कागज को ऐसे पकड़ा और पकड़ कर पेंसिल ली और सब बच्चों के सामने, बच्चे ऐसे सामने बैठे थे सब, और बाबा ऐसे कर रहा है। पता नहीं पेंसिल लगी कि नहीं लगी, लेकिन बाबा ने ऐसे कर लिया और फिर का बच्चे देखते हो बाबा का स्वरूप क्या है। बच्चों ने कहा ये तो कुछ नहीं पता चला। बाबा ने कहा मैं फिर एक बार दिखाता हूं। बाबा ने दूसरी बार उन्हें ऐसे कागज को लेकर के और ऐसे पेंसिल लेकर के फिर बाबा ने ऐसे करके कहा दिखाई दिया। सब चुप होकर बैठे, नहीं दिखाई दिया। बाबा ने कहा बच्चे बाप के स्वरूप को इन चरण चक्षु से नहीं देखा जाएगा, ये नाशवान नेत्र हैं। अनश्वर को देखने का दिव्य बुद्धि चाहिए और दिव्य दृष्टि चाहिए। बिना दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के बाप को देखा नहीं जा सकता। मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ये बाबा ने अपनी पहचान चित्र बनाकर स्वयं दी। मुझे याद है जगदीश दाता जी, जो कि उस समय चित्र भी बनवाते थे और साहित्य भी लिखते थे, मुझे भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला हुआ है। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो आपने चित्र बनाया, तो जो पहले चित्र ओवल शेप के बने हुए हैं, क्या ये सब चित्र खत्म कर दिए जाएं? क्योंकि प्लास्टिक के ओवल शेप के बने हुए थे, कागज पर ओवल शेप बने हुए थे, बड़े बड़े कैलेंडर ओवल शेप के चित्र बने हुए थे, क्या ये खत्म कर दिए जाएं? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, खत्म नहीं करने, केवल इसके बीच में एक छोटा सा सूक्ष्म पॉइंट लगा दो। ये उसकी फैली हुई लाइट है, लेकिन मेरा स्वरूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसके पश्चात जितने भी हमारे चित्र बने, उन चित्रों के मध्य पॉइंट लगाया गया, और जो बने हुए चित्र थे उनमें भी पॉइंट जोड़ा गया, और बड़े जो ओवल शेप के चित्र बने थे उनमें भी पॉइंट लगाया गया। ये परिवर्तन सब किया गया। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, वही इतिहास जो स्कूल में सिखाते हैं, वही इतिहास जो कॉलेज में सिखाते हैं, वही इतिहास जो उसके अंदर पीएचडी करता है, धीरे धीरे नॉलेज में फर्क आ जाता है। ये कहें कि पहले क्यों नहीं बाबा ने बताया, इतने समय के बाद क्यों बताया, जब बच्चों की आज इस तक मनोस्थिति तक आ गई है, अब मेरे बच्चे मेरे स्वरूप को पहचान कर मेरे से बुद्धि योग लगा सकते हैं, एकाग्रता का अभ्यास सीख लिया है। इसलिए बाबा ने अभी बच्चों को अपना स्वरूप बताया। तो मैं ये कह रही थी कि चित्र का इतना महत्व है, ये तो बाबा वैसे ही कह देते कि मैं ज्योति बिंदु हूँ। खास कागज मंगवाया और कागज पर लगा करके वो बच्चों को ऐसे दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं सूक्ष्म है, टच ही जैसे होता है, या टच भी शायद हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर पेंसिल ऐसे टच भी होती है तो कोई निशान तो नहीं बन जाएगा, लेकिन इतना सूक्ष्म है जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं दे सकता है। और जब बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बाबा ये तो बहुत ही सूक्ष्म है, इतना स्वरूप तो स्मृति में नहीं ठहरता, तो मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, बाबा ने ये भी कहा कि कि मेरी याद पारे मिसल है। पारे को अगर एक जगह टिकाना चाहेंगे तो टिकेगा नहीं, वो एक एक ऐसे ऐसे होता रहता है। ये बच्चे पारे मिसल है याद। लेकिन बच्चों को सरल करने के लिए मैं और बनवाता हूँ, ताकि तुम बच्चों को बाप को याद करना सरल रहे। तब बाबा ने 36 किरणों वाला चित्र, जो आज हमारे पास किरणें निकली हुई हैं, ये बाबा ने बनवाया था। सेकंड चित्र बाबा ने कहा था, गुण याद रहेंगे तो गुण ही याद रहेगा। किसके गुण हैं? तुम मुझे गुणों से भी तो याद कर सकते। मैं प्रेम का सागर हूँ। अगर पता चल जाए माँ को, मेरा बेटा लायक है, स्कॉलरशिप लेकर आया है, माँ उस बच्चे को कितना प्यार करती है कि उसके अंदर योग्यता इतनी बढ़ गई है कि कहीं वो केवल नंबर केवल लेता था, लेकिन आज वो स्कॉलरशिप तक पहुंच गया, तो उसका जो प्यार होता है वो हृदय का प्यार होता है, रूप से प्यार नहीं होता, उसके गुणों से प्यार होता है। आज हम कहें छोटा सा स्वरूप है, उसको क्या याद करें? अरे वो छोटा सा है कौन? उसके गुणों को तो देखो, उसकी शक्तियों को देखो, उनके सर्व महान कर्तव्यों को तो याद करो। तो बाबा ने 36 गुण में यही बनाया, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ, नर को स्वर्ग बनाने वाला हूँ, ये सारे गुण लिख दिए। बाबा ने कहा गुणों को याद करोगे तो गुनी भी याद आएगा। कईयों ने फिर भी कहा बाबा मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, तुम ये चित्र रखते हो ना बाबा का, देखिए चित्र को ना देखना, इस चित्र में उस विचित्र को याद करना। किस विचित्र का ये चित्र है जो हमारे सामने रखा है? ये साकार बाबा का चित्र बाबा के बाद में रखा गया कि वो चित्र है जिसने स्वयं विचित्र ने अपना कर्तव्य किया, जिस मुखारविंद से उन्होंने हमको जन्म दिया, जिसके मुख से उन्होंने हमें सत्य और असत्य का बोध कराया, ये वो सर्वशक्तिवान का ये साकार माध्यम रथ है। लेकिन याद किसकी आती है? जिसका वो रथ है, जिसका उसने इस्तेमाल किया। किसने किया? वो सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा ने। तो बाबा कहते चित्र का बहुत महत्व है। अब कई बच्चे हैं कहते हैं तो क्या कल्पना करें? कल्पना भी तो बहुत बड़ी शक्ति है, ये सरल नहीं होती है, हर एक कल्पना भी नहीं कर पाता है। मान लीजिए मैं और एक आर्टिस्ट हम एक बगीचे में गए और बगीचा सारा देखकर घर आ गए। मैं कहती हूँ बगीचा बड़ा सुंदर था, वैरायटी फूल थे, कई प्रकार के गमले गुलदस्ते रखे हुए थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। लेकिन एक आर्टिस्ट उसी बगीचे को अपने कागज के ऊपर अपनी कलम के साथ इस कदर खींच देता है कि किस कोने में पत्थर रखा था, किस कोने में लाल फूल थे, किस कोने में येलो फूल थे, उसने इतने ध्यान से देखा कि उसने पूरे का पूरा उस बगीचे को एक पेपर पर बगीचा बना दिया। मुझे ये तो मालूम ही नहीं, यहाँ पत्थर भी था, यहाँ ये भी था, था तो सही, लेकिन हर एक की वो शक्ति नहीं होती है कि हर चीज को वैसी कल्पना कर सके। लेकिन बाप को देखने के लिए बाबा कहते तीसरी आंख चाहिए, बच्चे विजडम का नेत्र चाहिए, जो समझ बाबा ने दे दी। फिर बाबा कहते अच्छा बिंदु नहीं समझ में आता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं एक सितारे जैसा हूँ। मान लीजिए मेरी फोटो आप इतनी सी भी देख सकते हो और 6 फुट बड़ी भी देख सकते हो, लेकिन मैं इतनी हूँ या 6 फुट हूँ तो मैं ना, फोटो तो मेरी है, आप नहीं इतना सूक्ष्म अनुमान लगा सकते हो। तो तो आप थोड़ा स्टार जैसा एक बिंदु रूप अपने सामने ले आइए। स्टार तो नहीं मुश्किल। और बाबा कहते हैं याद रखना, मैं तुझ आत्मा का पिता हूँ, मेरा देह से कोई रिश्ता नहीं है, ये तो प्रकृति के जगत में चोला बना है, प्रकृति के जगत में चोला मिल जाएगा, ये अविनाशी नहीं है, लेकिन तेरा और मेरा साथ रिश्ता अविनाशी है। तू मेरा पुत्र था, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र रहेगा, तेरा कभी नाश नहीं होगा, तू रोल वैरायटी अदा करता है, लेकिन जिस घर से आया था वापिस तुझे पुनः उसी घर में ही आना है, और जैसे रोल प्ले करने आया था फिर से तुझे वही रोल प्ले करने ही आना है। इसलिए बच्चे तो अपने स्वरूप को भी देख, तेरा स्वरूप क्या है, जिसको बाबा कहते हैं दर्पण में सामने देखते हैं, भी कंघी करनी है, कुछ मुंह ठीक करना है तो देख के ठीक करते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान समझ, समझ के दर्पण में देख, मेरा स्वरूप इतना दिव्य है, इतना चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है, मेरा स्वरूप शांत आनंद प्रेम पवित्र ज्ञान शक्ति संपन्न मेरा स्वरूप है। इसके लिए दूसरा दर्पण नहीं चाहिए, इस स्थूल शरीर को देखने के लिए स्थूल दर्पण चाहिए, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप को देखने के लिए सूक्ष्म दर्पण चाहिए, और वो है ज्ञान का दर्पण, समझ का दर्पण, नॉलेज का दर्पण, जिसके आधार से हम स्वयं को देख पाते हैं। अब कई बार हम देख नहीं पाते, अपने स्वरूप को भी दिखाई नहीं देता। मान लीजिए कोई चीज मैं आपको किसी चीज पर दिखा रही हूँ, और अगर उसका फोकस ठीक नहीं होता है, प्रोजेक्टर पर मैं चित्र दिखा रही हूँ, लेकिन अगर प्रोजेक्टर का फोकस ठीक नहीं होगा चित्र क्लियर नहीं आता, तो कहा जाता है जरा फोकस ठीक करो ताकि चित्र ठीक दिखाई दे। ठीक हमारा भी कभी मन कहाँ होता है, कभी बुद्धि कहाँ होती है, मन कुछ देख रहा है बुद्धि कुछ देख रही है, ये दोनों काम देखने के करते हैं। बाबा कहते हैं फोकस ठीक रखने के लिए मन और बुद्धि दोनों को अपने स्वरूप में भी एकाग्र करो, और दोनों को मेरे स्वरूप में भी एकाग्र करो, देखो अपने स्वरूप को कितना चमकता है, वो सितारा कितने सरल करके बाबा ने बता दिया, आकाश में चमकते हुए सितारे बच्चे देखे हैं ना, तू चमकता हुआ एक चैतन्य दिव्य सितारा है, और मैं भी चैतन्य दिव्य सितारा स्वरूप हूँ, तो ऐसा ही मुझे जान ले। लेकिन आदत पड़ी हुई है स्वयं को देह समझने की, कहते भी हैं कि मैं मनुष्य भगवान भी अपने जैसा ही बनाता है, मैन क्रिएट्स गॉड इन हिज ओन इमेज, जैसा उसके मन में आकृति होती है वैसा वो भगवान को भी बना देता है। हमने स्वयं को देह समझा तो हमने श्री राम श्री कृष्ण हनुमान गणेश सब बना दिए, जब हमको पता चलता है मैं कौन हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो मेरा कौन, तत्वों से बनी कोई चीज नश्वर है, अनश्वर नहीं हो सकती है, इमोर्टल नहीं हो सकती है, तो मेरा तो पिता इमोर्टल है जिसको मुझे याद करना है, मैं तत्वों से बने हुए किसी देह को देख करके कैसे उस पर मन टिकाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने तुझे आकर अपना स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया, तेरे स्वरूप को भी तुझे स्पष्ट करके बता दिया, तेरे धाम का भी तुझे मैंने पहचान दे दी, अपना धाम भी तुझे मैंने बता दिया, तो बच्चे तुझे क्या मुश्किल है, तू मुझे याद करना चाहता है तो इस देह और देह के जगत से तो थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि को हटा, लेकिन मन और बुद्धि हटेगी नहीं, उसको दूसरी जगह लगाने से वो आप ही हट जाएगी। एक बच्चे से एक चीज हम छुड़वाना चाहते हैं तो उसे भी एक दूसरी चीज पकड़ा दी जाए तो वो उस चीज में लग जाता है, तो पहले वाली छोड़ने वाली चीज को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार मन और बुद्धि हमारा जाता है देह दुनिया में, देह संबंधों में, देहों में। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं तू एक चेतन शक्ति आत्मा है, तो कभी अपने स्वरूप को देख तो सही, कितना उज्जवल, कितना निर्मल, कितना पावन तेरा स्वरूप है। तो ये नहीं कहता चला आया मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। अरे बच्चे ये खजाना तो तेरे पास है। किसी माँ का बच्चा किसी हॉस्टल में दूर स्थल पर पढ़ने जाता है तो माँ देखती है कोई चीजें कहीं अचानक ना भी मिल सके, तो जो उसकी जरूरत की चीजें कुछ होती हैं वो उसे पैक बना के देती और कहती है अपने साथ कुछ खाने पीने ये सब चीजें रख लो, पता नहीं मार्केट मिले ना मिले, दूर हो कुछ भी हो, और अगर तुम्हारे को जरूरत पड़े तो तुम्हारे पास ये चीजें पड़ी रहें। बाबा ने भी हमको इतने दूर स्थान पर खेलने के लिए भेजा, आप समझ सकते हैं, बिना कोई दिए लिए भेज दिया, खाली हाथ भेज दिया। उसने भी हमारे पास सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति के खजाने भर के दे दिए। जब जरूरत समझना तो यूज करना। पहले सब कुछ हमें मिल रहा था, हमें जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आज का समय वो आ गया कि जरूरत है हर समय। कहते तेरे पास खजाना है तो क्यों मांगता है। बच्चे तू देह से अपने को भिन्न समझ और अपने स्वरूप को देख, तेरे पास कितनी शांति है। अशांति तो किसी के बोल, किसी के व्यवहार या किसी घटना या किसी से तुलना करके तो अशांत होता है, या शांति तेरी चीज नहीं है तो इधर उधर से बटोर लेता है तब तो अशांत होता है। तेरे निज के पास तो शांति है, निज के पास तो प्रेम है, निज के पास शक्ति है, निज के पास आनंद है, निज के पास ज्ञान है, क्या तेरे पास नहीं। हे आत्मा तेरे पास सब कुछ है, मैंने सब धन दौलत तेरे को भरपूर करके भेजा हुआ है, खाली नहीं तू यहाँ आया। आज तुझे जरूरत है तो जरा अपने माल को निकाल कर इस्तेमाल, क्यों भिखारी बन करके दर दर जाता है। कभी मंदिर में गया, कभी गुरुद्वारे में गया, कभी साधु संतों की शरण में गया, कभी किसी ऐसे स्थान पर गया जहाँ शांति का अनुभूति हो जाए। बाबा कहते हैं तेरे को भटकना इसलिए पड़ा क्योंकि तुझे अपने खजाने की विस्मृति हो गई। मैं तुझे तेरे खजाने की जानकारी देने के लिए आया हूँ। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। हे मेरे पुत्र, जैसा तेरा पिता है वैसा ही तू है, तो अगर मेरे से मिलन मनाना चाहता है तो बाबा ने हमको दो बातें कही हुई हैं, जो हूँ, जैसा हूँ और जहाँ हूँ, तो मुझे वहाँ बैठकर याद कर। मैं जो हूँ हमें मालूम है और ज्योति बिंदु है, जैसा है सर्व गुणों का सिंधु है, और जहाँ है वो ज्योति देश है। और मैं भी जो हूँ, जैसी हूँ, जहाँ की हूँ, वहीं बैठकर अपने बाबा से संबंध जोड़कर बैठे, क्या मुश्किल है योग की। कहते योग की कुछ गहराई बताओ, मुझे तो नहीं लगता योग कोई गहरी बातें हैं जो मैं बताऊं बैठकर, सरल सी बातें हैं। मुझे मेरी पहचान मिल गई, मुझे मेरे बाबा की समझ मिल गई। अब उस पहचान और समझ के अनुसार मुझे उसको याद करना है, क्योंकि उसके साथ मेरे सर्व संबंध है। तो मैंने कहा या तो आधार ठीक नहीं या हमारी विधि ठीक नहीं, जिस कारण हम कहते कि इस वित्त तुझको ध्याऊं, तेरा योग कैसे लगाऊं। वो कहते तू योग शब्द ही ना कह, तू याद कह, क्योंकि बच्चे तू भूल चुका था मैं कौन हूं और मैं कौन, तुझे मैंने आकर पहचान दे दी। अब ये हम अपने आप से पूछे, हमको ये निश्चय हुआ है कि सचमुच में चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप एक आत्मा हूं, मैं नाशवान पांच तत्व का बना ये पुतला नहीं हूं। जो नहीं हूं वो हमने समझ लिया, जो हूं वो हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बहुत काल की स्मृति इस अल्प काल की स्मृति को स्थिर करने में थोड़ी मेहनत लगवाती है। लेकिन हम कुछ मेहनत तो करें, चलते फिरते उठते बैठते हम अभ्यास तो अपना बढ़ाएं। खाली अभी योग में बैठने का होता है, थोड़ा समय आकर बैठते हैं, वो भी कुछ बैठते हैं कुछ समझते हैं, अभी तो क्लास नहीं शुरू हुआ, जब क्लास शुरू होगा तब हम चले जाएंगे। योग को क्लास ही नहीं समझते, जबकि योग एक प्रमुख सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है। अब बताओ ये आपको मुश्किल लगता है क्या? जब उन्होंने मुझे आकर अपनी पहचान दे दी, अब उस पहचान में स्थिर होना क्या मुश्किलात है? लेकिन मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, तभी वो स्वरूप हमारे सामने आता है और मुझे मेरा स्वरूप दिखाई देता है। कईयों को ऐसा लगता है वो बिंदु को देखते रहें। देखते क्यों रहें? मालूम है ना वो बिंदु स्वरूप है। माँ को पुत्र की याद आती है, पति को पत्नी की याद आती है, तो क्या उसकी फोटो देखना शुरू करता है क्या? उसे मालूम है वो कौन है और क्या है। उसके कभी गुण याद आते हैं, कभी संबंध याद आता है, कभी कर्तव्य याद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं सरल करना है तो बच्चे याद रखो, मैं पिता हूँ तो मेरा पुत्र है। वो पुत्र जो वफादार होता है, आज्ञाकारी होता है, ईमानदार होता है, ऐसा पुत्र जिसको पिता याद करता है, पिता को पुत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे बाबा आज याद बहुत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो उनका ज्ञान सुना उसको सही रूप से जीवन में उतारा। वो खास कहता है देखना मेरे ज्ञान का नाम बदनाम ना कर देना, कोई ये ना कहे ये ज्ञानी क्या ऐसे होते हैं। मुझे ईमानदार चाहिए, वफादार चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र चाहिए। जो ईमानदार वफादार आज्ञाकारी पुत्र होता है, माँ बाप उस बच्चे को याद करते हैं और वो याद से याद पहुंचती है। बच्चा भी कहता है आज मुझे मम्मी आपकी बड़ी याद आई, और माँ कहता है बेटे आज मेरे को भी तेरी बहुत याद आ रही। आपको याद करनी ना पड़े, अगर सही ज्ञान का आपने उपार्जन किया है और सही ज्ञान को जीवन में अपना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे योग लगाने में मेहनत करनी पड़े, लेकिन ऐसे वफादार आज्ञाकारी पुत्र को स्वयं बाबा याद करे और बच्चे को उसकी याद के बिना रह ना पाए। जैसे रात को राजू भैया बहुत अच्छी क्लास करा रहे थे कि कैसे बाबा कैसे स्फूर्त बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, सहयोगी बच्चे, योगी बच्चे, जो हर बात में बाबा के यज्ञ की संभाल करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाप याद करता है। वो बच्चे याद नहीं करते, लेकिन उनको याद से याद खींची रहती, हर क्षण उनको वो याद आती। हम ऐसे बाबा के सपूत बच्चे बन जाएं। दुनिया में माँ बाप बहुत होते हैं, माँ बाप बच्चों को क्या देते हैं? चल अचल जितनी भी संपत्ति उनके पास है वो चलो उनको उनका अधिकार दे देंगे, लेकिन जब आत्मा चोला तज देगी तो सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। सात बच्चे क्या लेकर जाते हैं? किए कर्म बने संस्कार, वो साथ लेकर जाते हैं। जो हमारे विकारों का स्वभाव बना वो हम साथ लेकर जाते हैं, लेकिन बाप हम बच्चों को कहता है मैं बच्चों को ये संपत्ति नहीं देता लेकिन मैं श्रेष्ठ संस्कारों की संपत्ति देता हूँ, जिससे मेरे बच्चे नरसे श्री नारायण बन जाए, नारी श्री लक्ष्मी कहला जाए। कोई विद्यालय नहीं आपको ऐसा मिला होगा जहाँ कोई मनुष्य को देवता बनाते हैं, लेकिन दाता ने आके जिस विद्यालय की स्थापना की, प्रतिदिन हम क्या सुनते हैं? यही तो बातें सुनते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्रोधी क्रोध करता है तो समझ लो उसमें कोई कमजोरी आ गई है, कमजोरी उससे गलत शब्द गलत बोल गलत व्यवहार करा रही है। ऐसे कमजोर को धक्का देकर गिरा देना ये आपका काम नहीं है। ऐसे कमजोर को शुभ भावना शुभ कामनाएं श्रेष्ठ विचार देकर के उस आत्मा की कमजोरी को हर दो, दुख दूर कर दो, उसका भी कमी कमजोरी से उसे मुक्त करा दो। बच्चे ये तुम्हारा काम है। रोज अच्छी से अच्छी बातें हमको सिखाते हैं। कोई आपसे गलत बोल बोल दे तो ये समझ लो कि श्रेष्ठ बोल की ये धनी ही नहीं है आत्मा, इसलिए निर्दम से तुम क्या चाहते हो वो तुम्हारी झोली भरेगा। निर्दम को कुछ दे सकते हो तो तुम दे दो, लेकिन वापस उससे लेने की एक्सपेक्टेशन ना रखना कि मैंने इतना अच्छा बोल बोला, इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इसने आगे से क्या किया। वो निर्धन है, निर्बल है। आप मदद कर सकते तो कर दो मदद उसकी, लेकिन रिटर्न नहीं चाहना मुझे वापस भी ये देवे। अब ये जब सब शिक्षाएं जो रोज बाबा देते हैं, सोचिए इन शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले देवता नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। एक मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ पढ़ाई से पता चलता है कि मेडिकल कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, पढ़ाई से पता चलता है इंजीनियरिंग कॉलेज है। और सर्वशक्तिवान के विद्यालय में आओ तो पता चलता है कि मानस से देवता बनने का विद्यालय है। यहाँ है ही पवित्रता की बात, है ही गुणों की बातें, है ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें। यही तो बाबा हमको रोज सिखाता है। बच्चे कभी कहता है चक्र चलाओ, कभी कहता है साकाश दो, विश्व की सर्व आत्माओं को मेरे से शक्ति देकर आप सबको दो, क्योंकि आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। ये नहीं कहता किसे डिमांड करो, मेरे से मीठा बोले, मुझे रेस्पेक्ट दे, मुझे मान दे, मुझे शान दे। मंगता नहीं बनना, तो स्वयं रेस्पेक्ट वर्दी बन जा, तो अपने स्वमान में आ जा। हमने अपने मामा बाबा को देखा, वो स्वमान में रहकर सबको सम्मान देते रहे, सबको सम्मान दिया, सबको रिगार्ड दिया, किसी को कभी आंख नहीं दिखाई, कभी गलत शब्द नहीं बोला। तो आज हम उसी माँ बाप के जो साकार में रहे उनके बच्चे हैं, और उस ज्ञान के सागर निराकार दाता उसके बच्चे हैं। और ऐसे बाप के बच्चे बाप से आशीर्वाद लेंगे, दुनिया में कहेंगे लो माला देते हैं राम राम जपो, किसी ने हमको राम जैसा बनने का आदेश तो नहीं दिया, शिक्षा तो नहीं दी, माला दे दी, लेकिन मुझे माला का मन का बनना है ऐसा तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया। प्यारे बाबा, माला नहीं जपो तुम, माला का मन का बन के दिखाओ। तुम राम राम नहीं कहो, राम कृष्ण के गुणों को ध्यान रखकर अपने को वैसा ही गुणवान बना के बच्चे दिखाना है। कहते जानवर को इंसान बनाना टीचर का काम है, लेकिन इंसान को देवता बनाना स्वयं सर्वसमर्थ का काम है। और उस परमात्मा जो हमें देवता बनाने वाला है, आज हम सब उसके विद्यालय के विद्यार्थी हैं, और हम विद्यार्थी कहें हम उसको याद कैसे करें। ऐसा प्यारा बाबा, ऐसा मीठा बाबा, ऐसे ज्ञान का सागर दाता, हम गिरे हुओं को उठा करके हमें ऐसा पढ़ाता है। कहते तू पढ़ जा बच्चे, तू तो बड़े बड़े वकील जजों को भी पढ़ा सकता है, पढ़े हुओं को डिग्री देने वाले भी तेरे से पढ़ने आएंगे, क्योंकि तू मेरी पढ़ाई पढ़ने वाला। तो ऐसा महान जीवन हम सब बनाने वाले। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट के लिए याद में बैठेंगे, फिर बहनें आएंगी और याद का आपका जो समय है वो चलेगा। इस याद में ख्याल रखना, कभी अपने स्वरूप को देखना और अपने स्वरूप को बाप से मिलाना, कभी अपने गुणों को देखना और अपने गुणों से प्रभु से मिलाना, कभी अपने धाम को देखना और अपने धाम को शिव बाबा के धाम से मिलाना। हम दोनों का एक ही धाम है। कभी उनके दिन संबंधों को सामने लाना और उन श्रेष्ठ संबंधों के अनुभव में जाना। ऐसे दिन दिन रूप से अगर आप अपने को कमेंट्री देते रहेंगे, बिन बिन स्वरूप से आप बाबा को याद करते रहेंगे, तो आपकी याद स्थायी बनती जाएगी।
अब चल कर ले मिलन। चलना।